نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين. دوسري instruction یہاں پہ کیا دی گئی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہرو اپنے گھروں میں. اگلی انسٹرکشن یہ، اپنے گھروں میں ٹھہرو. کیا مطلب؟ یعنی گھر عورت کے لیے سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. گھر جو سمجھ لیں ایک نیچرل ایک پردہ ہے عورت کا، یہ تو پردہ ہے نا جو آپ باہر کر کے جاتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری ایک پردہ دے دیا، ایک نیچرل پردہ دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ پردے کے اندر ہی ہے، وہ محفوظ ہے، یہ حفاظت ہے عورت کے لیے. آج جب عورتیں گھروں سے باہر نکلی بلا ضرورت، ضرورت سے تو نکل سکتی، اس کی آگے انسٹرکشن بھی بتا دی گئی کہ کیسے نکلنا ہے. اب جب عورتیں بلا ضرورت نکلی ہیں نا تو اس سے کتنے فتنے پیدا ہوئے. کل ہی ایک پروگرام میں نے دیکھا جس میں یہ تھا کہ سیکشل ہراسمنٹ ان امریکہ، اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام کرنے والی، بڑی بڑی کانگریس تک میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ کام کرنے والی، بڑی ریسپیکٹیبل جگہوں پہ کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ بھی ایسی حرکتیں، ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہوئی ہوئی ہیں کہ جو وہ آ کے بیان کر رہی تھی اور پریشان تھی. اس میں عورت کی کا بھی قصور ہوتا ہے جس وقت کہ وہ ایسی حلیوں میں باہر جاتی ہے کہ وہ مرد کو خود دعوت دیتی ہے. چاہے یہاں کی عورت ہو یا کہیں کی بھی، عورتیں یہ نہیں اپنے حلیوں سے چاہ رہی ہوتی کہ اب کوئی مرد آ کے مجھے اس طرح سے کرے یا ایسی باتیں سنائے. وہ چاہے اپنے شوق میں کر رہی ہوں، اس کو زیب و زینت کا شوق ہے، یہ نیچرل اس کے اندر چیز ہے، لیکن مرد کے لیے یہ ایک فتنہ بن جاتا ہے. حالانکہ یہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں ان معاملات میں، اس کے باوجود جابز پہ عورتوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں اور ان عورتوں نے اپنی چیزیں بیان کی کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے کہا گیا، ایسے ایسے ہوا، تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا کہ وقرنا فی بیوتکن، یہ اس میں حکمت ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. آتی ہمارے لیے گھر ہی سب سے محفوظ جگہ. آج بعض ایون دینی لوگ بھی، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ان کی یہ سوچ ہے ہماری عورتیں کیوں نہیں گھر سے نکلتی، ہماری عورتیں نکلیں، ہماری عورتیں کام کریں، وہ دیکھو وہ عورتیں باہر نکلتی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا، ہماری عورتیں گھروں میں گھسی ہوئی ہیں، گھروں میں گھسی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ باہر نکلو، آپ لوگ یہ کام کرو، آپ وہ کام کرو. عورت کو قرآن نے کہہ دیا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو. ہم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی شیطان، اور پھر وہ اپنے چیلوں کو بلاتا ہے کہ وہ بھی آ کے اس کو دیکھیں، اور پھر شیطان ان کے دلوں کے اندر خیالات ڈالتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمیں بچانے کے لیے کہیں گئی. یہ ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ عورتیں پاس کہتی ہیں ہائے چادر اور چار دیواری، اس نے ہمیں قید کر دیا ہے، ہمیں اس طرح کر. آپ کو قید نہیں کیا گیا. آپ ایک ڈاکٹر کے جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، شوگر سے پرہیز کرنا ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا. اب آپ کہیں گے تو نے تو مجھے قید کر دی، تو مجھے مار ڈالے گا. وہ کہتا ہے میں تو آپ کو مار نہیں ڈال رہا، میں تو آپ کو زندگی دے رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، آپ کے لیے نقصان دے. آپ کہتے ہیں نہیں تم میرے دشمن ہو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں. اگر ہم ایسے لہجے میں مردوں سے بات کریں گے، یا ہم نمبر ٹو بلا ضرورت بات کریں گے، یا ہم لمبی لمبی باتیں کریں گے، یا ہم ہنس ہنس کے باتیں کریں گے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس نے ہمیں بتا دیا بلا ضرورت بات نہ بڑھاؤ، صرف کام کی بات کرو. مردوں کے خاوندوں کے دوست ہیں تو ان کے ساتھ हामिद बैठे और वो ही उनको एंटरटेन करें। औरत का काम नहीं वो अपने शोहर के शोहर के दोस्तों को जाके एंटरटेन करने लगे, वो उनसे जाके पूछने लगे आप कैसे हैं और आप कैसे नहीं, और वो आ जाके कहने लगे कि भाभी आप बड़ी खूबसूरत लग रही। ये तरीके एक मुसलमान घराने के तरीके नहीं हुआ करते, ये तरीके काफरों के तो हो सकते हैं, हमारे नहीं है। आप अपने कुरान में देख लें आपके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है। फिर आप यहाँ पे क्या बता दिया गया, अपने घरों में रहो क्योंकि जब घर से निकलोगी शैतान को मौका मिल जाता है। जो अपने घरों में देखें पर्दे के साथ बैठी रहेगी वो खुद ब खुद महफूज रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत सर से पैर तक पर्दे की चीज है, ये जब घर से बाहर कदम निकालती है शैतान झांकने लगता है, और ये सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब उस वक्त होती है जब ये अपने घर के अंदरूनी हुजरे में होती है, घर में भी अंदर में होती है। अब मुझे आप बताएं ये कहां से फिर ये बात आ जाती है कि नहीं नहीं आप इन औरतों को भी बाहर निकलना चाहिए ताकि जब हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा इन लोगों को कि हम कौन है, हम मुसलमान है और हम क्या। ये हमारा काम नहीं है इस तरह से, हम जगहों जगहों में जाके काम करती फिर और हम कहेंगे अब ये चूंकि मैं बड़ी तबलीग कर रही हूँ दीन। हाँ जिन जरूरतों के लिए निकलने का की इजाजत है वो जरूरत के सारे काम है, चाहे वो दीन के काम हो, दीन की इसलाह के कोई काम हो, कोई और ऐसे यानी आपकी जरूरियात हैं, आपकी तालीम की जरूरियत है, जरूरत है, या आपकी कोई इलाज की जरूरत है, या बाज दफा औरत के ऊपर माशी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं कि उसको जॉब करनी पड़ती है, उसको बिजनेस के लिए निकलना पड़ता है, उसको ऐसी चीजों को कि उसकी जरूरत बन जाती है क्योंकि नहीं है कोई कमाने वाला या नहीं इस तरह से गुजारा होता, वो हाथ बटाने के लिए करने लगती है। कोई जरूरत है तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं। इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहो। बाजार में है कि औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके कहा कि जिहाद वगैरह की तो सारी फजीलतें मर्द ले गए, यानी मर्द जिहादों पे जाते हैं उनको अजर मिलते हैं, अब आप हमें भी तो कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हम भी मुजाहिदीन की फजीलत को पा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में से जो अपने घर में पर्दे और इस्मत के साथ बैठी रहेगी वो जिहाद की फजीलत पा लेगी। और आज कुछ जगहों पे सुनने में आता है कि कुछ लड़कियां रेडिकलाइज हो गई और वो निकल पड़ी, और क्या उनको ये नहीं पता कि कुरान उनके बारे में क्या कहता है, औरत के बारे में क्या कुरान का हुक्म है। इनको किसने इजाजतें दी कि ये कहें कि अब हम इस्लाम के दिफा के लिए तो हम निकल रहे हैं, तो हम लड़ने के लिए निकल रहे हैं। और वो तो बात की बातें कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है, मगर औरत के ऊपर तो ये काम है ही नहीं। कितनी जंगों में आपने देखा हो कि औरतें भी जा जाके लड़ रही थी, औरतें भी फ्रंट उस पे थी और वो भी काफरों के साथ पूरे उसमें मतलब वन टू वन लड़ने लगी हुई थी। हाँ मरहम पट्टी करती थी, पीछे रहती थी, पानी पिलाती थी, इस किस्म के काम नर्सिंग वगैरह के या ऐसे काम वो करती थी, लेकिन औरतों को भी काम नहीं थे ऐसे कि वो आगे लड़ने में चली जाए, वो भी बवक्ते जरूरत जिस वक्त एमरजेंसी थी, ऐसे नहीं कि रोज के उनके यही काम थे। और अब अगर उनको बाहर जाना पड़ता है, जाहिर है जरूरत पड़ेगी बाहर जाना होगा, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा हर टाइम वो पूरी जिंदगी घर के अंदर ही हो। अब जब उसको बाहर जाने के लिए कोई जरूरत है, कोई चीज लेकर आनी है, कोई और अपना काम है, उसके लिए बाहर जाती है, तो फिर कैसे जाएं बाहर। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, फिर पहली जाहिलियत की तरह के तबर्रुज मत करके जाओ। तबर्रुज क्या होता है, तबर्रुज है खुद को नुमाया करना, खुद को प्रोमिनेंट करना। खुद को प्रोमिनेंट कैसे किया जाता है, औरत कैसे अपने आप को प्रोमिनेंट करती है, अपनी जेबो जीनत करके, अपने आप को खूबसूरत बना के, अपने कपड़े, अपनी मेकअप, अपने जेवर, अपनी ये चीजें सारी ऐसी हैं जिससे औरत अपने आप को खूबसूरत बनाती है। और इसी वजह से यहाँ पे जो हमने तर्जुमा लिखा है कि अब तुम इजहार जीनत ना करो, तो इसका एग्जैक्ट तर्जुमा तो ये नहीं है, मगर ये जीनत से औरत अपने आप को नुमाया करती है, इसलिए हमने ये किया। अपनी अपनी बॉडी को यानी प्रोमिनेंट करना, ऐसे लिबास पहन के, ऐसे चुस्त लिबास पहन के, या अपनी चाल से भी प्रोमिनेंट किया जाता है। और ये चीजें चूंकि पहले जमाने की यानी जाहिलियत की यानी इस्लाम से पहले की चीजें थी, इसलिए फरमाया कि जो जाहिलियत के जमाने के तबर्रुज हैं उस तरह से तुम मत करो। लौंडियां पहले जमानों में खुलेआम फिरती थी, जो ढकी छुपी होती थी तो समझ लिया जाता था ये खानदानी शरीफ औरत है। पहले जमाने में भी अमूमन ऐसा होता था, ये खानदानी शरीफ औरत है, वो ढकी हुई, तो लौंडियां ऐसे ही घूमती फिरती रहती थी। आज के वक्त में इसी को बड़ी मॉडर्निज्म का नाम दे दिया गया, जो जाहिलियत की चीजें थी। मॉडर्निज्म तो ये जो इस्लाम लेकर आया कि ला तबर्रज न तबर्रुज जाहिलियत लूला, ये तो बल्कि बैकवर्डनेस है, क्योंकि ये जाहिलियत की चीजें। जाहिलियत में क्या होता था, अपने जिस्म को, अपने जो सिंगार होता था, जेवर होता था, उसको नुमायां करती थी औरतें। नंबर टू क्या करती थी, मिक्सअप होती थी मर्दों के साथ, यानी मिक्स्ड गैदरिंग्स उनकी होती थी। मिक्स अप होना, कोई मिंगल होना मर्दों के साथ कोई बुरा नहीं समझा जाता था। नंबर थ्री जाहिलियत में क्या होता था, बेजा आवारा बाहर घूमती रहती थी, ना कोई मकसद है ना कुछ है, बस ऐसे ही बाहर निकली पड़ी घूम रही हैं अकेली। नंबर फोर उनकी क्या जाहिलियत में होता था, औरतें मर्दों के आगे आगे चलती थी ताकि मर्दों की नजरें उन पे पड़े, मर्द देखेंगे उनको तो फिर उनकी चाल भी देखेंगे, उनके कपड़े भी देखेंगे, उनका मतलब उनके ऊपर नजर पड़ेगी, उनसे अट्रैक्ट होंगे। नंबर फाइव क्या थी, फ्लर्ट करती थी मर्दों से, फ्लर्ट करती थी। नंबर सिक्स क्या, दुपट्टे ऐसे लेती थी, दुपट्टे लेती थी मगर ऐसे लेती थी कानों के पीछे कर लेती और पीछे यानी कमर पे डाल लेती थी। ऊपर अगर लिया भी हुआ सर पे तो आप सोच लें कि पूरा का पूरा दुपट्टे के पल्लू पीछे जा रहे हैं। तो अब क्या है, सीना भी खुला हुआ, गर्दन भी खुली हुई, कान भी खुले हैं। जैसे हमारे यहाँ आज बाज दफा लोग हिजाब लेते हैं लेकिन कानों को खोल लेते हैं, कानों के ताकि सारी इयररिंग्स वगैरह नजर आए। ये जाहिलियत की तरीके की चीजें थी, इस्लाम की नहीं है चीजें। कानों का जेवर दिखाना या गर्दन दिखाना ये भी जाहिलियत की चीज है। तो ये सारे जाहिलियत के काम थे। फरमाया इस किस्म के काम तुमने नहीं करने कि मर्दों को तुम दावत नजारा दो कि देखे हमारी तरफ। अब आप कहते थोड़ी हैं, कोई भी नहीं चाहता तो देखे, कोई औरत नहीं चाहती होगी कि मेरी तरफ आदमी देखे, लेकिन जब वो इस किस्म के बनाओ सिंगार करके निकलेगी तो मर्द जरूर ही देखेंगे, जाहिरी बात है, क्यों नहीं देखेंगे। कोई ऐसे खूबसूरत लिबास में निकली हुई है, बन संवर के निकली हुई है, तो एक दफा तो आदमी कहेगा कि मैं देखता हूँ कैसी लग रही, दूसरी दफा चाहे ना देखे एक दफा जरूर नजर उठा के देखिए। अल्लाह ने औरत को कीमती बनाया और उसका काम घर की दुनिया से मुतल्लिक है। बाहर उसको जब निकलना है तो जरूरत से सिर्फ निकलना है, बाकी उसका काम नहीं है। मर्दों का काम है बाहर का, औरतों का काम है और मकाम है घर। इसलिए वो घर के अंदर रहेगी तो फिर वो सेफ भी रहेगी और उसके काम भी घर में ही है, उसके काम भी पूरे होंगे। बाहर निकलेगी तो घर भी यानी उसका इफेक्ट होगा और वो एक खतरे में ही रहेगी, और कुछ नहीं तो किसी की नजरों के तो खतरे में रहेगी। कई नजरें उठती हैं, जब नजर उठेगी आप क्या सोचते हैं कि इस औरत को क्या गुनाह नहीं मिलेगा, जिस जिस मर्द की नजर इस पे उठ रही है, क्या ये औरत सोचती है कि मैंने कहा इनको मेरी तरफ देखे, ना देखे मेरी तरफ नहीं। जब आप बन संवर के ऐसे निकलोगे और उनकी नजरें उठेंगी, आप उसमें कसूरवार हैं क्योंकि आपने अपने आप को नुमाया किया। आपने चाहे ऐसे फिटिंग वाले कपड़े पहने या चाहे अबाया या ऐसा पहन लिया जो इतना फिटिंग वाला है, आंख तो उठ रही है ना। तो इस जब तबर्रुज करेंगे तो दावत देंगे मर्दों की निगाहों को कि अब वो देखें। अब आप इन औरतों का देख लें कि जब ये इस तरह के लिबास पहनती हैं तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर जो चीजें जो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये काम हुए हैं औरतों के साथ जॉब की जगहों पे या और जगहों पे जो होते हैं, तो क्या इसमें औरतों का कसूर नहीं है? क्या सिर्फ मर्द का? उसके अंदर तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल ये हविस रखी है, ये एक चाहत या अट्रैक्शन रखी है औरत के लिए। अब अगर एक पहले से भूखा इंसान है, भूख उसको लगी हुई, और आप उसके सामने प्लेट में जबरदस्त खाना सजा के, जिसकी खुशबुएं भी उठ रही हो, सजा के उसके सामने रख दें, क्या होगा? उसके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? उसकी भूख और बढ़ेगी कि कम होगी? उसका जी चाहेगा कि मैं उठा के छीन के खा लूं? और दूसरी तरफ एक खाना है लेकिन उसकी ना खुशबू आ रही है और वो ढका हुआ है, वो आपने दूसरी एक और प्लेट से ढक दिया। किसी को कितनी भी भूख लगी है तो अब उसकी भूख बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसके सामने तो ऐसे ही है जैसे मेज है, उसी तरह एक प्लेट है खाने की, क्योंकि वो प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हुई है, अब तो उसको नजर भी नहीं आ रहा। इसी तरह मर्द के अंदर औरत के लिए एक इश्तिहा, एक भूख है। अब उसको यानी बढ़ाती है कोई औरत जिस वक्त के वो तबर्रुज करके बाहर निकलती है, और जब वो अपने आप को ढांप लेती है और खुशबू नहीं लगाती फैलने वाली, तो फिर वो और मर्द की इश्तिहा को बढ़ाएगी नहीं। अल्लाह अकबर। तो हिजाब का या ये तबर्रुज ना करने का ये मकसद ही ये है कि मर्दों के लिए अट्रैक्शन का सबब ना बने। और अगर हिजाब करके भी कोई अट्रैक्शन का ही सबब मान रही है कि चाल अपनी ऐसी बना ली है, आवाजें ऐसी करती है, बातें ऐसी करती है, कॉरिडोर्स में खड़े होके हंस रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, और वहीं से मर्द गुजर रहे हैं, और वो मस्जिद भी है, तो क्या हमारे हिजाब हैं और क्या हमारे अबाएं हैं और क्या हमारी ये चीजें? आप एक हदीस है जिसने मुझे हिला के रख दिया, वो इतनी ज्यादा हमारे लिए यानी परेशान होने के लिए काफी है कि हम इसके ऊपर गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से बदतरीन वो हैं, वर्स्ट वर्स्ट औरतों में से वर्स्ट वो हैं जो घरों से बेपर्द होके निकल जाती हैं, वो मुनाफिक हैं और उनमें से कम ही जन्नत में दाखिल होंगी। कैन यू बिलीव दिस कि अपनी जन्नत को दांव पे लगा दिया सिर्फ इसलिए, चस्के के लिए कि मैंने बस अपना हिजाब नहीं लेना, मुझे गर्मी लगती है, मुझे ऐसे होता है, और मुझे बस ये बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम है, और इस इन बातों की वजह से, और मुझे जरूरत नहीं है, और बस जो मैं पहना हुआ वो ही काफी है। जो बेपर्द होके निकलेगी उसके लिए ये है। तो अल्लाह ताला ने हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमें चीजें नहीं बनाया कि हम एक चीज है कि जिसको लो जो मर्जी आके देखे, कोई शोकेस में पड़ी भी कोई चीज है कि आदमी गुजरे और हर आदमी देखे कि ये कैसी है और उसके मुंह में पानी भरा है और फिर आगे चले। ये तो एक जिल्लत की बात है, ये कोई इज्जत की बात नहीं है। हम शादियों पे ऐसे बन संवर के जाएं कि मुझसे ज्यादा कोई हसीन ही ना लगे। वो औरतें तो आपको कभी भी नहीं देखेंगी, वो तो अपने में ही मगन होंगी, मगर मर्दों की नजरें जरूर उठेंगी। आपको पता है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दफा गिरेबान खुला हुआ था, फरिश्ते अंदर आने से बाहर रह के हम अंदर नहीं आ सकते, हज़रत उस्मान का गिरेबान खुला हुआ, और बड़े हया वाले थे। अल्लाह को हया पसंद है, उसने इंसान के अंदर खासतौर पर औरत के अंदर बहुत ज्यादा हया रखी। अगर वो हया की चादर को फाड़ के और बेहयाई का लिबास पहन लेती है तो फिर सोचिए वो अल्लाह से कितनी दूर हो जाती। फिर उसके बाद अपने आप को खुद कितना भी कहते रहे मैं तो नेकी बहुत हूँ, आपको क्या पता मेरे अंदर कितनी नेकी है, क्योंकि आपके अंदर की नेकी को किसी ने क्या करना। जब आप इस हदीस को देखिए कि बदतरीन है वो जो घरों से बेपर्द होकर निकलती, अंदर की नेकी की तो बाद की बात है, आप बाहर से ही अपने आप को दिखा रही हैं कि मैं अल्लाह की नाफरमान हूं, देख लो मैं नाफरमान हूं और मैं खुल्लम खुल्ला नाफरमान नहीं करूंगी। एक बंदा एक छुप के होता है, एक बंदा खुल्लम खुल्ला अल्लाह को चैलेंज करता है, यहाँ नहीं मैं करूंगी जो मेरे जी में आता है मैं वैसे ही करूंगी। किसका मुकाबला कर रहे होते हम? जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया वला तबर्रुजन तबर्रुज जाहिलिया, तो हमारे लिए बताए रह की गई बात क्या रह गई? सब चीजें हमें बता दी गई, कैसा लिबास पहनना है, कैसे आपने चलना है, कैसे आपने बोलना है, फिर भी अगर हमें ना समझे और हमें इग्नोर करते जा रहे हैं तो नुकसान किसका होगा? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत इतर लगा के फूल पहन के महकती हुई, यानी उसकी खुशबू है हर तरफ फैल रही है, मर्दों की किसी मजलिस के पास से गुजरती है तो वो जानिया है, जिना करने वाली है, ये भी एक जिना है। आप देखें ना मर्द, वो मैंने जो आपको खाने की मिसाल दी कि खुशबू भी उठ रही है तो वो उसको महकती हुई औरत नजर आ रही है, शादियों पे परफ्यूम भी लगाए हुए, फुल मेकअप बाकायदा तैयार होने के लिए जाते हैं कि हम पार्लर से तैयार होके आए ताकि हमारी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद अगर हम मर्दों के अंदर घूम रहे हैं, उसके बाद हम कितना गुनाह लेके ऐसी मजलिस से लौटते, क्या मजलिस ये हमारे लिए बनेगी कयामत के दिन कि जिसमें आज हम हंस हंस के बोलते हैं, खुश होते हैं और बस ऐसे घूमते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, कहीं ये ना हो कि कयामत के दिन वही मजलिस हमारे लिए अजाब बन जाए, वही अजाब बन जाए। तो इसलिए ये मामूली बातें नहीं है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वो तो सबसे पारसाई औरतें थी, ये हम सब के लिए है। अगर कोई राह चलता एक दफा भी मुड़ के देख लेना कि ये क्या गजब ढा रही है, तो सोच लो कि उस औरत ने अपने पर कितना बड़ा गुनाह ले लिया। अब वो मुंह से बोल के नहीं कह रही कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो या मेरी तरफ देखो, उसका हुलिया बोल बोल के कह रहा है कि मैं ऐसे आई हूं, अब मेरी तरफ देखो। अल्लाहु अकबर। तो ऐसे हुलिये ना बनाओ, ऐसे मिक्सअप ना हो, ऐसे बाहर बेजा ना जाओ। ये जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट लिखवाए हैं जाहिलियत के जमाने के, इनको नोट कर लें कि ये सारी जाहिलियत के, इन सब के ऑपोजिट करना है। सिर्फ इसलिए बाहर ना जाओ कि बस घर बैठे दिल घबरा रहा है, चलो बाहर चलो, घर में दिल नहीं लगता सारा दिन। कई औरतों का घर में दिल ही नहीं लगता, वो कहती मैं बाहर घूमते रहे, वो तुम्हारा तो जगह ही तुम्हारी, अल्लाह ने बता दी कि घर तुम्हारी जगह है, अब उनका घर में नहीं दिल लगता, दिल घबराना शुरू हो जाता है, चलो गाड़ी पकड़ी और उधर चले गए, उधर चले गए, कभी सहेली कभी उधर, नहीं तो सड़कों पे घूमते रहे, नहीं तो किसी मॉल में ही जाकर घूमने, दिल आ जरूरत ना कुछ चाहिए ना कोई कुछ, तुम अपने घर में बैठो। इसी तरह आज देखें वेस्ट में ये लोग अब कहते हैं कि औरतें आज बोलते हैं गो बैक होम, घरों के अंदर रहे, उनको पता चल गया कि घरों से हमने इनको निकाला है तो क्या नुकसान हुआ, इनके घर बिखर के रह गए, बच्चों में तरबियत नहीं हुई, इन्होंने कमाया नहीं है गवाया है, आदमी के ऊपर जिम्मेदारी लगा दी तुम कमा के लाओ, और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये तरीके बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। हम बता दिया गया नहीं, घर में रहो, जब निकलो तब भी तबर्रुज से नहीं, ना बजने वाला जेवर पहनो कि जो छन छन करता हो कि आदमी मुड़ मुड़ के देखे, पर्दे के साथ जाओ। वाकिम नस्सलाता, और कायम करो नमाज को, वाती न जकात, और देती रहो जकात को, नमाज कायम करो जकात देती रहो, यानी नमाज और जकात से वो भी नहीं एग्जेम्प्टेड है, अगर नबी की बीवियां हैं, या अगर हम कहें कि औरतें हैं, औरतें अब क्या करें, वो तो कोई कमाती नहीं है, अगर कमाती नहीं भी है तो जेवरात तो उनके होते हैं ना, जेवरात उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी जकात अदा हो, अगर शौहर नहीं जकात देता आपके जेवरात की तो आपको खुद दे देनी चाहिए, नहीं कुछ कमाती है तो उसी जेवर को थोड़ा बेच के उसमें से जकात दे दें, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम क्या करें, हम तो कमाते नहीं तो जकात कैसे दें। वातीन अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ये इताअत कैसे करनी है, दिल की खुशी से करनी है, दिल में घुटन के साथ नहीं। और अल्लाह की इताअत ये भी है जो यहाँ पे हुक्म दिए गए, अगर हम अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, मैं तो बड़ी इताअत गुजार हूँ, लेकिन ये हुक्म नहीं बस मैंने मानने, ये बस मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि औरत की कमजोरी है ना कि बनाओ सिंगार ये चीजें सज धज जेवरात जीबो जीनत ये सब औरत की कमजोरी है, उसका जी चाहता है ऐसे कर, और अल्लाह ने इससे रोका नहीं है मगर उसकी हदूद बता दी, और यही इताअत है कि हम उन्हीं हदूद के अंदर रह के करें, इनसे बाहर ना निकले। वो इताअत करो, इताअत जो वर्ड है ना उसके अंदर ही ये बात है कि खुशी के साथ मान लेना हुक्म। हाँ जी, तो खुशी के साथ कितने लोग मानते हैं, बात ये भी है। या फिर अंदर अंदर घुटन होती रहती, आए इस्लाम ने तो सारी ही चीजें बंद कर दी, हमारी सब चीजों से ही रोक दिया, हमारा तो दम घुटता है, कर भी लेंगे लेकिन उसके बाद मारे बंदे का मुसीबत के साथ।